शांति, ओम शांति। आज रविवार है, हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने बच्चों के भाग्य की भी महिमा की है। बाबा सब बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये भाग्यवान बच्चों की सभा है। बाप के रूप में क्या भाग्य मिलता है, टीचर के रूप में कौन सा भाग्य मिलता है और सतगुरु के रूप में कौन सा भाग्य मिलता है। बाबा ने कहा कि बच्चों को अपने स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है, सहयोगी बनना है और साथ साथ सबको समर्थ भी बनाना है। बाबा ने भी कहा कि बाबा बच्चों की लीला को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे भी तो कितने अच्छे हैं, कितने वंडरफुल हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि हर समय क्या क्या लीला, क्या क्या कार्य करते हैं, बाबा देखते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और वर्णन भी करते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो सोचता स्वरूप है, सोचते बहुत है लेकिन बनना क्या है, समृद्धि स्वरूप। फिर बाबा ने ये भी ध्यान खिंचवाया बच्चों को क्या करना है, समाधान स्वरूप भी बनना है। बाबा बार बार बच्चों से एक बात कहते हैं, बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे मेहनत करें, बाप के बच्चे हों और वो फिर मेहनत करें तो बाबा को ये भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा कि देखो जीवन मुक्ति तो आपका वैसे ही अधिकार है, लेकिन इस वर्ष आपको क्या करना है, मेहनत मुक्त बनना है। और फिर बाबा ने याद दिलाया कि आपकी लास्ट स्टेज क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसके लिए भी ध्यान खिंचवाया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2024 और रिवाइज्ड मुरली की डेट है 17 मार्च 2003। आज की डेट 22 दिसंबर 2024, रिवाइज्ड मुरली की डेट है 17 मार्च 2003, 17 मार्च 2003। मुरली का मुख्य हेडिंग, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सर्व का सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे, हर बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें। एक है परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। जैसे कोई अच्छे घर में जन्म लेता तो कहते हैं ये बहुत बड़ा भाग्यवान है, तो बाबा कहते पहली लकीर है परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरी सत शिक्षक की, श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी है श्रीमत की चमकती हुई लकीर। 3 लकीरें तो बाबा ने श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच 3 लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपनी 3 भाग्य की लकीरों को देख रहे हैं ना। बाबा तो देखते हैं, बाबा के हर एक वो अनुभव भी करें। आप सभी भी अपने 3 भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप हैं तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भागी और किसका हो सकता। हमारा बाप ही भाग्य विधाता है तो भाग्य तो सदा साथ ही है। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व में अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। आपको पता है ना कि हर वर्ष कितनी संख्या बढ़ती है, वो गिनती करते थे। पहले के टाइम पर एक फॉर्म भेजा जाता था और सेंटर से पूछा जाता था रेगुलर कितने हैं, इरेगुलर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, माताएं कितने, कुमार इतने हैं, तो हर साल उसका कैलकुलेशन करते थे। तो ये 2003 के अंदर 6 लाख की संख्या उस समय लिखी गई थी। तो बाबा को बताया हुआ, बाबा को पता था, तो बाबा बता रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना, सारे विश्व की आबादी कितनी है और उसमें से 6 लाख तो बहुत कम है। तो बाबा कहते कोटों में कोई हुए ना, वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें कौन सी, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। दुनिया में भी देखते हैं ना, माता पिता, शिक्षक और गुरु, ये तीनों ही बातें आवश्यक हैं। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक हैं। लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्मा के मत और उनकी पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर। बाबा की पालना, मनुष्य की पालना, बाबा की पढ़ाई और मनुष्य की पालना में बाबा कहते रात दिन का अंतर है। लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत, पालना और पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, अब हर एक का दिल गाता है पा लिया पा लिया। फिर बाबा ने कहा क्या पाना है, पा लिया क्या कहेंगे। तो बाबा को पूछ रहे थे बच्चों से, पा लिया है ना तो क्या कहेंगे, हाथ उठा के खड़ा बाबा को बता दो, पा लिया ना, जिन्होंने पा लिया हाथ खड़ा करो। बाबा कहते पा लिया। फिर बाबा ने पूछा ऐसा तो नहीं कि पाना है, पा लिया क्या कहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पाना है, पा लिया है ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बच्चे भी गाते रहते हैं वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, और बाबा भी क्या कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना। एक तो स्मृति में रख लिया, लेकिन बाबा कहते सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाबा कहते स्मृति बनेगी तो समर्थ बन जाएंगे, सोचना जो है वो समर्थ रूप नहीं है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते। आज की लीला बाबा ने क्या देखी, कोई कोई सोचता स्वरूप रहते। अब अपने आप को चेक कर ले कि बाबा को पता है कई कई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते, कभी सोचता स्वरूप और कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, फिर क्या करें कैसे करें, सोच सोच के पहले ही ताकत कम हो जाती है, फिर कार्य को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। संगम युग की विशेषता सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। द्वापर से लेकर कितनी मेहनत करते हैं, अभी उसका फल नेचुरली मिल रहा है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भ्रम की स्मृति में रहने से क्या मेहनत की। बाबा बता रहे थे देह भ्रम की स्मृति में रहे तो कितनी मेहनत की और अभी भी करते रहते हैं। मैं फलाना हूँ, फलाने में भी एडिशन कर देते हैं, मेरे अंदर ये गुण है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे क्यों नहीं समझते, मैं जो करता वो कोई नहीं कर सकता, उसके पीछे लग जाते हैं। तो बाबा इसी बात को बता रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, ये भी तो मेहनत की नेचुरल रहा, ये भी तो कहा ना मेहनत किया, मैं हूँ नेचुरल रहा, नेचर बन गई वह बॉडी कॉन्शियस की, इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के बजाय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते हुए भी ना सोचते हुए भी देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे, जैसे देह भान में जल्दी से आ जाते ना वो नेचर और नेचुरल हो गए, तो आत्म अभिमानी स्थिति मर जीवा जन्म में नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ सोचते रहते ना, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ी समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, बच्चे को पूछेंगे ना कि वो क्या तुम्हारा नाम है, बता देगा तुम कौन हो, नाम तुम्हारे पिता का नाम क्या है, स्कूल में कौन से पढ़ते हो, कहेगा किंगल गार्डन में पढ़ता हूँ, छोटे स्कूल में पढ़ता हूँ, सब बता देता, समझ आ गई ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो और किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए, पहला परिचय आत्म अभिमानी की नेचर नेचुरल बन जाए, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए, नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद तो नहीं करना पड़ता है। मैं पूछ रहे हैं कि जो नेचर है आत्मा की वो निरंतर रहती है, याद तो नहीं करना पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज भी नेचुरल हो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है, अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाबा ने रिजल्ट भी सुना दी, कई बच्चों की है स्टेज तो है लेकिन क्या करना है, वो स्टेज है उसको निरंतर बनाना है। तो बाबा की जब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा पेपर है। कहने में बाबा तो बच्चों को हल्का कर देते हैं कि छोटा है, लेकिन यही है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप। लास्ट पेपर क्या है? नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या लक्ष्य रखें, क्योंकि मार्च के बाद फिर अप्रैल आते हैं, तो अप्रैल के महीने में वार्षिक सेवाओं की और स्व उन्नति की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर स्व उन्नति के लिए पूरे वर्ष के लिए सेवा के प्लान और पूरे वर्ष के लिए स्व स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए प्लान बनाते हैं ना, तो बाबा से पूछ रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें, तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी समृद्धि स्वरूप भव। नए वर्ष का लक्ष्य सदा देही अभिमानी समृद्धि स्वरूप भव। जीवन मुक्त प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। क्या करना है? जीवन मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले मेहनत मुक्त बनो। तो नए साल का स्लोगन क्या दिया? सदा देही अभिमानी समृद्धि स्वरूप बनो और मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। हमारी स्थिति ही अनेक आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है, कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। मेहनत मुक्त बनेंगे तो सर्व को मुक्ति मिलेगी, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। जब समर्थ है तो व्यर्थ कितना भी आए वो आ ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों की स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। कोई भी बच्चे कोई भी समस्या में बाबा कहते मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। टाइटल क्या मिल गया? समस्या समाप्त करना है और समाधान समर्थ स्वरूप बनना है। क्या ये हो सकता है? बोलो दादियां हो सकता है? दादियां बाबा के सामने बैठी है ना, बाबा के टाइम पर सब दादियां सामने ही, सब दादा ही सामने होते थे। तो बाबा दादियों से पूछ रहे बोलो दादियां हो सकते हैं? फिर टीचर्स बोलो हो सकते हैं? पांडव बोलो हो सकता है? बाबा तो चारों ही तरफ भाई बहने टीचर माताएं कन्या सबसे पूछते हैं। तो पांडव से पूछा पांडु हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना बाबा के सामने, तो हाँ कर देते ना, बाद में कहेंगे बाबा ये हो गया वही हो गया। तो बाबा कहते फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता था। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके, बच्चे भी तो बहुत होशियार है ना। बाबा को कहते बाबा ऐसा था ना, हम तो करना नहीं चाहते थे, हो गया ना। बाबा भी याद कराते, बच्चे इतने अच्छे से खेल करते हैं, बाबा ने देखे हैं, देख भी चुके हैं। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा हो, 100 गुना समस्या का रूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं। कौन कौन सी समस्या है उसको रिपीट करती हूँ, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा, फिर 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। अपने स्वमान में रहो तो परिस्थिति क्या करेगी। स्वस्थिति का साधन है स्वमान, नेचुरल रूप में स्वमान हो। कई बार स्वमान को भी रटते रहते ना, ऐसा मैं हूं, मैं ऐसा, वो तो है ही है, लेकिन वो रट रट करके नेचुरल रूप बन जाए। तो बाबा कहते हैं नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं नहीं मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। कई बार होता है ना, भूल जाते, फिर याद आता है, नहीं नहीं मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, याद नहीं करना पड़े, नहीं नहीं मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं तो हूँ ही ना। बाबा कहते हो ना, फिर क्यों उसको करते हो, और कोई होने वाला है क्या। आप ही दिल तख्त नशीन हो, आप ही नूरे रतन हो, तो बाबा कहते आप तो हो ही ना, और कोई होने वाला तो है क्या। कल पहले कौन बने थे, और बने थे आप ही बने थे, पक्का। कलप पहले आप ही बने थे, आप ही थे, आप ही थे, आप ही हैं, और हर कलप आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कलप पहले वाले हैं। इस कलप के हो या अनेक कलप के हो, फिर बाबा ने पूछा क्या कहेंगे, इस कलप के हो या अनेक कलप के हो। जो इस कलप के हो सारे कलप के हैं, तो अनेक कलप के है ना। इस कलप के हो या अनेक कलप के हो, अनेक कलप के हो ना, हाथ उठाओ जो हर कलप वाले हैं, हाथ उठा दो जो हर कलप वाले, वो हाथ उठा दे। देखो कई बैठ रहे सोच रहे हैं क्यों नहीं उठा रहे, हर कलप वाले, अनेक कलप वाले हैं। तो बाबा कहते हैं इस कलप के हो या अनेक कलप के हो, अनेक कलप के हो ना, हाथ उठाओ जो कलप वाले हैं, वे फिर तो निश्चित है ना, आपको तो 5 सर्टिफिकेट मिल गया है ना, या लेना है। बाबा पूछ रहे हैं 5 का सर्टिफिकेट मिल गया है या अभी लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है। बाबा एक बात के लिए पक्का कराते, 3 बार पूछे मिल गया है या अभी लेना है, तो बच्चे धीरे धीरे मिला नहीं है तो धीरे धीरे सोचते रहेंगे, फिर सोचते रहेंगे, लास्ट में एक ने सिर हिलाया, सारे सिर हिला देते थे। बाबा समझ आते थे कि ये ऊपर का सिर हिला रहे, वास्तव में मिला नहीं है। तो बाबा कहते हैं आपको तो 5 सर्टिफिकेट मिल गया है ना, या लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है। कलप पहले मिल गया है, अब क्यों नहीं मिलेगा। कलप पहले भी मिला था, अभी भी मिलेगा, अब क्यों नहीं मिलेगा। तो यही समुचित स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे 5 विजानर का चाहे 5 का, ये फर्क तो होगा ही। 5 विजानर वाले तो राजा ही पद पालेंगे, 5 वाले आ जाएंगे प्रजा में, जाना तो है, तो बाबा ने कहा वो तो मिला ही हुआ है, ये फर्क तो है ना, चाहे 5 विजानर का चाहे 5 का, ये फर्क तो हुआ है ही, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा और प्लेन में जाके उड़ जाएगा। ये स्मृति बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि ट्रेन में जा रहे हैं तो जाते जाते भूल जाए, और प्लेन में जाते प्लेन उड़ा तो स्मृति भी उड़ जाएगी। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, या प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं, जैसे देखो इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली ना, क्योंकि मार्च के महीने में आती है ना शिवरात्रि, कभी फरवरी एंड में होती है, कभी मार्च में होती है। तो बाबा ने कहा शिवरात्रि के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाए थे और बहुत सक्सेसफुल गई थी। तो बाबा कहते जैसे देखो इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली ना, दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना, तो किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सब ने पक्का किया था कुछ भी हो जाए हमको बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, तो एक दृढ़ता रखा, लक्ष्य रखा, फिर सब सहयोगी बन गए, एकता हो गई। तो बाबा कहते एकता और दृढ़ता। सोचा था कि 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए उस वर्ष में 67 यज्ञ की, जैसे भी करते ना कितने साल हो गए, तो 67 ईयर हो रहा था। तो सबने प्लान किया था कि इस वर्ष 67 प्रोग्राम करेंगे, लेकिन प्रोग्राम 67 तो क्या कितने ज्यादा हो गए। तो बाबा बता रहे हैं सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उसमें भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। सोचते 10 प्रोग्राम करेंगे, उमंग उत्साह होता है तो 20, 25, 50 कर लेते हैं। तो बाबा कहते रिजल्ट किसके हैं? उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना, ऐसे ही सब मिलकर एक दो का हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना है, आत्मा को मुक्ति दिलानी है। लेकिन ये तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। प्लान भल कितने भी बनाओ उसको स्मृति में लाना है, दृढ़ संकल्प करना है, एकता से करना है, तो कार्य हो ही जाएगा। अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन ये तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है। फॉरेन वाले का हमेशा हर साल, पहले कभी मार्च में करते थे और अभी तो उनका फिक्स हो गया फरवरी मास में। विदेश के सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल निवासी और जोनल कोऑर्डिनेटर, जो कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ उनके जो भी रीजन के इंचार्ज हैं, सभी सीनियर, सभी सेंट्रल वासी, उनकी फरवरी मास में मीटिंग होती है। पूरे साल का सेवा का प्लान करते हैं, उसमें मार्च में हुआ होगा, फरवरी के एंड में हुआ होगा। तो बाबा बता रहे और बाबा को सारा समाचार मिला। और अभी भी फॉरेनर्स की मीटिंग, उसको कहते एनसीसी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और रीजन कोऑर्डिनेटर की मीटिंग है 9 फरवरी से लेकर के लगभग 16-17 फरवरी तक है। हर साल उनकी फरवरी में मीटिंग होती है और अपनी जो मीटिंग होती है वो अप्रैल के महीने में होती है। तब तक वो अपने प्लान बनाते, फिर हम प्लान बनाते, तो दोनों को मिला करके इकट्ठा किया जाता है। तो बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। भारत वालों की मीटिंग अप्रैल में बाबा को समाचार बता देते थे। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। सेवा के प्लान भल बनाओ लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे उड़ते चले। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले, दाता बनकर सहयोग दो। एक तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनके उड़ते चले, दाता बनकर सहयोग दो। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। अपने स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो तो ये भी बहुत बहुत पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। बाबा कहते किसी भी आत्मा को सम्मान में टिकाएंगे, सम्मान देंगे तो उसकी ताकत आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना है, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना और सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। बाबा ने कहा इस वर्ष प्लान में बैलेंस रखना है और करना क्या है, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है और मेहनत मुक्त बनना है, समर्थ बन समर्थ बनाना है, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी, सबसे सहज पुरुषार्थ है। और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो, सम्मान दो और मेहमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते, सम्मान देंगे तो सब वैसे भी उसको मानते हैं। और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ लेने का नहीं, देते जाओ। बाबा कहते देते जाओ लेने का नहीं, लो और दो। ये तो बिजनेस वालों का काम है, बिजनेस वाला क्या करेगा, ये चीज इतने की है तुम लो, इसका ये प्राइस है, लो लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। तो बिजनेस वाले तो कहते लेना देना करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को क्या करना है, देना ही देना है, लेने का लक्ष्य नहीं। तो बाबा कहते लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो ना, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। बस सेवा कर ली बहुत खुश हो जाते, बाबा हमने ये कर लिया ये कर। बाबा कभी भी एक स्थान पर टिकने नहीं देते, बाबा उनकी महिमा करके कहेंगे अच्छा बहुत किया, अब इसके आगे क्या करना है। तो बाबा ने कह दिया अभी आगे बढ़ना है ना। बाबा ये नहीं कहते कर दिया बहुत अच्छा ठीक है यही करो, तो बाबा कहते थे आगे बढ़ो। तो बाबा कहते सभी ने सेवा अच्छी की, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाले। शिव जयंती पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए थे, भाषण किए थे और कई प्रकार के प्रोग्राम किए थे, लाइट एंड साउंड से भी किए थे, कई तरह के मॉडल बना के किए थे। तो बाबा कहते साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट अच्छी निकली। अनेक आत्माओं को उलहना भी समाप्त किया, साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी, सब तक तो नहीं पहुंच सकते ना। बाबा कहते थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप हो, क्योंकि आप ही बाप के साथी हो, तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा तीन सेवाएं करनी, वाणी द्वारा भी और साधनों द्वारा भी और अनुभव के द्वारा भी। तो बाबा कहते हैं अभी एक ही समय इकट्ठा तीन सेवाएं करनी है, एक है वाणी द्वारा, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। तीन साधन साथियों, पहला है वाणी द्वारा, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। कई स्थानों पर देखते हैं बाबा के कमरे का या सेंटर का वाइब्रेशन इतना पावरफुल है, लोग चलते हुए भी अंदर आते हैं और ऐसा अनुभव करके जाते हैं। तो बाबा कहते वातावरण ऐसा बनाओ कि जो वाइब्रेशन का भी प्रभाव पड़े। देखो अभी लास्ट जन्म भी आप सबके जल चित्र कैसे सेवा करें। मंदिर में जाते हैं, जड़ मूर्तियां देखते हैं, कहाँ का मंदिर में इतनी अच्छी अच्छी जड़ मूर्तियां, उसको देखते हैं, उनके वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे हैं, तो देख करके अनुभव करते हैं। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं? वो बोलते तो कुछ नहीं है ना, वरदान देते हैं। वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसी वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल ही बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती। सुनी हुई बातें तो भूल जाती है ना, जो अनुभव है वो तो दिल में पक्का हो जाता है। तो बाबा कहते वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो वो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना, निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो क्या सहज निकलता है? तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। आपकी सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना, है ना अनुभव। ये गुजरात और बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं, क्योंकि शिव जयंती पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे और बाबा के सामने गुजरात और बॉम्बे बैठा है तो बाबा उनको बहुत मुबारक दे रहे हैं। क्यों विशेषता क्यों रही, क्यों मुबारक दे रहे हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हैं लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता। दृढ़ संकल्प किया और संगठन साथ में मिल करके कार्य किया। तो बाबा उनको बता रहे हैं फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास के समान। एकता नहीं है तो कार्य करना है महीने वर्ष तो क्या कई साल लग जाते, और जहां एकता है जो वर्ष का काम है वो महीने में उससे भी कम टाइम में पूरा हो जाता है। तो बाबा कहते जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने। अच्छा अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है दुनिया में, अभी भी देखो क्या हाल हो रहे, कहाँ पर कुछ हो रहा है, कहाँ पर कुछ हो रहा है, रोज रोज कहाँ पर प्रकृति है, कहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, आग लग जाती है, दुनिया में भी बहुत बुरी हालत है, चारों तरफ भयभीत है ना। तो बाबा कहती है अभी सेकंड में ज्ञान सुनी स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ, बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, फिर बाबा बता रहे हैं, पहले ड्रिल कराई और ड्रिल के बाद चारों ओर के बच्चों के भिन्न-भिन्न याद प्यार और समाचार पत्र के और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हर बार जब बाबा का टर्न होता था सब बच्चे याद प्यार भेजते थे, कोई तो कार्ड बनाकर भेजते, कोई ईमेल भेजते, कोई समाचार लिख के भेजते थे, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न समाचार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हरि कहता मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। अब ये नई वंडरफुल बात रहती, हरि कहता मेरी याद देना। अरे बाबा को साकार बाबा के टाइम पर बाबा को कहते थे मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना, मेरी भी याद लिख लो, तो ऐसे सबको बताते थे। बाबा कहते दिल से याद करो ना, जहाँ मिलेंगे मेरी याद देना। अरे बाबा बच्चों को याद कर रहे हैं, हर एक कहेगा मेरी याद हो, बाबा याद करे उसको याद में समा जाओ ना। फिर भी बाबा तो बच्चों के प्यार को स्वीकार करती है, हर एक कहता मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। जब कहते ना मेरी याद देना, इसका मतलब दूर हो जाते। फिर पूछते हैं, मैं आपको बताती, कई बार ऐसा होता है जब भोग के लिए जाते हैं ना, अच्छा आपने मेरी याद दी है बाबा को, अरे तुम क्या कर रहे थे वहां पर, बाबा को मैंने याद दिया इसका मतलब तुम नहीं थे। याद कौन देता जो दूर होता है, याद के स्वरूप में टिक जाओ। चलते अच्छा मेरी याद दिया, फिर बाबा ने क्या कहा, और बाबा तो कहते मैंने उसको पहले ही जवाब दे दिया, उसने वो जवाब सुना ही नहीं है, तो इसलिए मेरी याद देना के बजाय अभी क्या कहना है, मैं बाबा के पास हूँ, बाबा के सामने हूँ, बाबा को याद कर रहा हूँ। तो ये तो एक नेचर बन गई, जैसे दुनिया में होते ना, वहां जा रहे मेरी भी याद दे देना। अरे वो याद तो दे देगा, लेकिन दिल की याद तो पहले ही पहुंच जाती है ना। तो बाबा कहती है हरे कहता मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। जब तक बाबा को याद दो तो बाबा कहते हो तो पहले से पहुंच गए, बच्चा तो पहले से याद कर रहा है, तुम तो अभी लाई हो याद, तो इसलिए पहले से याद करे तो बाबा के पास पहले ही पहुंच जाता है ना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है, दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गए, बाबा ने तो उनको दिल तक पे बिठा दिया। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा सोमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद है दादियों से, मतलब दादी जी से मुलाकात, फिर सब दादियों से। दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। बाबा दादी से बात कर रहे हैं। फिर कहते क्यों खुश हैं? पहले बाबा ने कहा कि बाप दादा आपके ऊपर बहुत खुश हैं। फिर बाबा ही दादी से पूछ रहे क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था ये करना है अभी करना है, दादी का हमेशा रहता था। दादी को सुबह अमृत वेले उठते सेवा का प्लान आता था कि आज हमें ये कार्य करना है, या एक जो एक एक लाख का कार्यक्रम किया था ये दादी को सुबह सुबह संकल्प आया था। दादी को अमृत वेले संकल्प आया, फिर दादी ने ये प्लान सबके सामने रखा। और उस समय जब ये प्लान रखा तो कई भाई बहने कहने लगे दादी ये कैसा होगा कि एक लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। दादी ने कहा वह संकल्प किया है, फिर उस संकल्प को साकार करने के लिए सभी जोन वालों ने विशाल प्रोग्राम रखे। कहीं पर एक लाख तो क्या, डेढ़ लाख, कहीं दो लाख, कहीं दो लाख से ज्यादा, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम रखे। तो दादी क्या करती थी, करना ही है। तो ये दादी का बता रहे हैं बाबा। तो विशेष इस बात पर खुश हैं जैसे ब्रह्मा बाप साबुन को ऑर्डर करता था ये करना है अभी करना है। ब्रह्मा बाबा तो सीधा ही कहते हैं ये कार्य करना है, सेवा करनी है, ये करना है, ये अभी करना है। ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया है। फिर दादी कहती बाबा आप भी तो मेरे साथ हो ना। फिर दादी जो भी बाबा कहते थे दादी तो हमेशा कहती थी बाबा आप ही करते हो। तो दादी ने कहा आप भी तो मेरे साथ हो ना, वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। बाबा भी कितना निर्माणचित, दादी को निमित्त बनाया। फिर दादी को कहते निमित्त तो आप बनी है ना, और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता ही सफलता है। मुझे याद है यही साल था जब दादी ने दृढ़ संकल्प किया था कि हर जगह पर विशाल कार्यक्रम रखे जाएं। तो श्री बाबा बता रहे हैं कि ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता ही सफलता है, इसलिए आपने रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। दादी का देखते थे संकल्प किया, दादी आकर के बताती और वो कार्य हुआ ही पड़ा है। तो श्री बाबा कह रहे हैं इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है, तबीयत ठीक है ना। तो दादी तो बहुत मेहनत करती, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ना। तो बाबा पूछ रहे हैं तबीयत ठीक है ना, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत भी कुछ नहीं है। दादियों का हमने एग्जाम्पल देखा, थोड़ा बहुत शरीर कुछ खेल करेगा लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति से क्या होता था। दादी जानकी का भी हम देखते थे, कहेंगे अभी तो तबीयत ठीक नहीं, क्लास में नहीं आएगी, आके देखो तो क्लास में पूरी क्लास करा रही। अव्यक्त बाप दादा का भी देखते थे कि कई बार कहते थे आज बाप दादा का रथ ठीक नहीं है, आज बाबा मुरली छोटी चलाएंगे। उसी दिन बाबा की मुरली इतनी लंबी होगी, और उसी दिन क्या देखते थे बाबा बच्चों से भी लंबी मुलाकात करते थे। तो शरीर उस समय इतना कंट्रोल में आ जाता और वो भी सहयोग देता है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है तो तबीयत भी कुछ नहीं है, कमाल है ना। फिर है आगे दादियों से, दादियों को मिलना देखकर सभी की दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। सभी की दिल होती थी क्योंकि बाबा के मिलने के बाद पहले दादियां, दादी और दीदी आती, फिर उसके बाद सभी दादियां स्टेज पर होते थे। तो कईयों को मन में होता था कि दादियों के साथ हम बैठे, हम भी दादी होते तो हमको बाबा तो अभी कहते, बाबा तो सबसे मिलते रहते ना। दादियों को मिलना देखकर सभी की दिल होती हम भी दादी होते तो मिलते ना, आप भी तो दादी बनेंगे ना। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है, बाप दादा ने प्लान बनाया है कि दिल में अभी दिया नहीं है, दिल में एक प्लान बनाया है लेकिन बाबा ने बताया नहीं है। शुरू से पढ़ती, दादियों को मिलना देखकर सबकी दिल होती हम भी दादी होते तो मिलते ना, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है, तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार सेवा में आदि रतन निकले हैं उनका संगठन पक्का करना। साकार बाबा के टाइम के निकले हुए एक था, साकार बाबा के जो आदि रतन थे दादियां, कोई किस सेवा पर, कोई कहां सेवा पर, कोई बहुत दूर दूर सेवा पर थे, तो उन सबका संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? फिर बाबा कहते जब आप करो। तो दादी ने पूछा कब करेंगे? जब आप करो, ये ड्यूटी आपकी दादी जानकी की है। बाबा से दादी ने पूछा कब करेंगे, और दादी जानकी सामने बैठी हैं, तो फिर बाबा ने कहा ये ड्यूटी जो है दादी जानकी की है, आपके दिल का संकल्प भी है ना। दादी जानकी भी बहुत अच्छे अच्छे से प्लान बनाती थे कि जो सेवा के आदि रत्न उन सबको बुलाए। एक अपने फोटो भी देखा होगा, आदि रत्नों की एक फोटो भी है बाहर लगी हुई, भी देखी होंगी कि एक बार आदि रत्न जितनी दादियां हैं उन सबको बुलाया था, उनका संगठन रखा था, बहुत अच्छा रमणीक प्रोग्राम रखा था, और उनके लिए ग्रुप फोटो भी है, फिर उसमें दादाओं का भी है, उसी आदि रत्न दादियों के साथ चार पांच जो दादाएं थे उनका भी फोटो है उसमें, दादा विश्व रतन, दादा चंद्रास, दादा आनंद किशोर, ये सब आदि रत्नों के फोटो भी उसमें है, बाहर लगा हुआ भी होगा, आप देखेंगे, नहीं तो ये फोटो बीच बीच में हम देखते भी रहते हैं। तो आपके दिल का संकल्प है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है। दादियों का हमने देखा कि उनकी एक मत सदा रही, कभी भी भिन्न भिन्न मत नहीं रही है। अभी तो क्या होता है अपनी मत सब देते हैं, लेकिन उनकी जो मत होती थी वो इतनी एक रहती थी, सब हां जी में हां करके एक साथ मिलकर के एक ही आवाज में होता था। इसलिए आज यज्ञ का जो भी कारोबार है दादियों की एकता और संगठन के कारण ही ये सब कारोबार इतना विशाल बना है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि जैसे आप दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी है, जो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है पांच पांडव, पांच है लेकिन संगठन की शक्ति है, संगठन की निशानी है। अच्छा, जो अभी साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं या सेवा में लगे हैं वह उठो। दो ग्रुप, एक था यज्ञ की स्थापना के आदि रत्न, दूसरा था जो साकार बाबा के टाइम पर बाबा के बच्चे बने और सेवा में लगे, वो हाथ उठाओ। है कोई यहाँ पर बैठा हुआ? ये कौन है? है महेंद्र भाई। अच्छा महेंद्र भाई, मैं शीलू में, जमुना प्रसाद भाई नीचे है, और कोई है इधर? साकार बाबा के टाइम कहाँ आया? साकार बाबा के होते हुए जो ज्ञान में वो बात करो। साकार बाबा के टाइम आप आए महेंद्र भाई? अच्छा, साकार बाबा के टाइम आए, एक है साकार बाबा की सेवा में लगा, जो साकार बाबा के टाइम आए, जैसे हम 58 में ज्ञान में आए, शिलू बहन 58 में ज्ञान में आई है, और जमुना प्रसाद भाई उससे पहले ज्ञान में आए हैं, अभी जो साकार बाबा के टाइम ज्ञान में आए और फिर सेवा में लगे वो हाथ उठाए। तो दो चार गिने, जमुना प्रसाद भाई नीचे आंगन में खड़े हुए सुन रहे हैं, बहुत पुराने इनके पास तो कितने अनुभव है, और साकार बाबा के समय आए हुए पालना लिए बहुत बड़ी सीनियर बहने हैं, अभी भी पूरे भारत के अंदर भी हैं, विदेश में भी है, विदेश में जैसे कि हमारी मोहिनी दीदी है, जयंती बहन है, इनको तो बहुत प्यार से बाबा ने पाला। जयंती बहन की भी कई कहानी सुनी होगी, मोहिनी दीदी को भी बाबा ने कितना प्यार से पाला, कई फोटो उनकी भी हैं, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं, थोड़े से भाई थे, पांडवों के बिना थोड़ी गति है, पांडव हैं तब तो गति होती ना, यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। बाबा के सामने तो थोड़े बैठे थे ना, बाबा के यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठित को संगठन, फिर एक ये भी प्रोग्राम बनाया था, जो साकार बाबा के टाइम पर फैमिली आई उनका बनाया था, जो साकार बाबा के टाइम सेंटर पर है उनका भी, साकार बाबा की पालना लिए हुए हैं उनका भी बनाया था, तो वो सबको बुलाया था। उसके लिए बाबा बता रहे हैं संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी, इनकी मिस दादी जानकी की, संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी दादी जानकी की है। और ये दादी तो बैंक बोन है, दादी प्रकाश मणि, बाबा कहते ये तो बैंक बोन है, साथ है ना। दादी जानकी कहती थी ये भी हो, फिर बाबा कह रहे हैं ये दादी तो बैंक बोन है, बहुत अच्छे अच्छे रत्न है, अच्छा सब ठीक है ना, कुछ भी करते रहते हो लेकिन आपके साथ संगठन की महानता है, किला मजबूत है ना। अच्छा अब सुनेंगे आज का वरदान। स्वमान की सीट पर सेट हो हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भाव, स्वमान की सीट पर सेट हो तो हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भाव, सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मस्त सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं, कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी इस सीट पर सेट हो जाओ, सीट वाली का ही ऑर्डर माना जाता है, सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे, संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग, ये युग को वरदान है तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। आज का स्वमान, फिर अव्यक्त इशारा सुनेंगे। आज है 22 तारीख, आज का स्वमान है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो, स्वमान है मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, योग अभ्यास मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया के नीचे अपनी मनसा वाचा कर्मों से विश्व सेवाधारी बन अपने तन मन समय संकल्प सफल कर रहा हूँ, बाबा से सफलता मूर्त का वरदान प्राप्त हो रहा है, धारणा बोल में मधुरता संतुष्टता हो, चिंतन सफलता मूर्त कौन बन सकता है। अव्यक्ति इशारा, आज का अव्यक्ति इशारा आपको बता रहे हैं, आज है 22 तारीख, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, संतुष्टता अर्थात सदा दिल दिमाग आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है, संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा, दुआ मांगेगा नहीं कि दुआ दो, मांगेगा दुआ मांगेगा नहीं लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी, ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। अच्छा ओम शांति, सभी भाई बहने बैठे रहेंगे। आज आप सबको बताएं, वर्षा बहन आओ स्टेज पर, आज हमारी प्रतिभा बहन, उन्होंने भी साकार बाबा की पालना ली है और खास म्यूजियम को 50 साल से सेवाएं करते हुए म्यूजियम की अनेक सेवाओं को बढ़ाया है और म्यूजियम के लिए तो हम सब मधुबन निवासी भाई बहनों का कितना प्यार रहा है, सबकी खातरी करना, बीच बीच में बुलाना, सबको खिलाना। और आपको ये भी पता हो कि जब म्यूजियम बना था उस समय 1969 में बना, उस समय ये ओम शांति भवन आदि नहीं बना था, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। तो हर वर्ष मई के महीने में एक विशाल कार्यक्रम किया जाता था, वो विशाल कार्यक्रम जो है म्यूजियम के आंगन में करते थे। और प्रतिभा बहन को भी ये म्यूजियम की सेवा करने का इतना सुंदर मौका मिला, जो दिल के साथ इतनी सेवा की, और साथ में वर्षा बहन भी एकदम साथी बन करके, सहयोगी बन करके सेवाएं करती रही हैं। तो आज 22 दिसंबर है, तो आज प्रतिभा बहन का स्मृति दिवस है। तो स्मृति दिवस के दिन तो क्या होता है, प्रतिभा बहन का सदा दिल होता था आज मधुबन वालों को ये खिलाना है, आज शिव जयंती पर ये प्रोग्राम रहेगा, आज दिवाली पर ये प्रोग्राम रहेंगे। और शुरू में तो आपको पता ही है, अच्छा आज की इस दिन पर कटोरी, इतनी बड़ी कटोरी भर के आप सबको किस पाइन एप्पल का हलवा, जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाइन एप्पल का हलवा इतनी बड़ी कटोरी भर के पहली बार आप सबको मिल रहा है, क्लास के सभी भाई बहनों को मिलेंगे। और ये सारा एकदम एक काबू में पाएंगे, धीरे धीरे सारे दिन में खा पाओगे। अभी तो गरम गरम मिल रहा है, ताजा बन करके आया है, बाहर क्लास के बाद आप सबको गरम गरम मिलो। और साथ में एक किंग, और 22 तारीख आज उनका स्मृति दिवस है, क्योंकि उनका दिन सदा रहता था ये भी खिलाए वो भी खिलाए, नई नई चीज बना के खिलाते। और म्यूजियम में जब भी भोजन का प्रोग्राम होता था, नाम देते थे मधुबन निवासी, देखो तो सारे ही आते थे, और सबको विशेष निमंत्रण होता था। तो वो उनकी जो शुभकामना रहती थी, उसी शुभकामना के निमित्त आज आप सबको पाइन एप्पल का गरम गरम हलवा और साथ में ये किन्नू मिलेगा। और उनके निमित्त गुरुवार के दिन भी भोग और ब्रह्मा भोजन रहेगा। तो अभी आप कुछ बोलो वर्षा बहन। वर्षा बहन भी वैसे ही, जैसे प्रतिभा बहन का दिल बड़ा, दिल खुला, और हर कार्य को सहज रीति से, अच्छी रीति से करो। ऐसा नहीं है कहेंगे थोड़ा देखो तो सही, ऐसे कहेंगे बल्कि अच्छी तरह से दो। तो इनका भी दिल उनकी तरह बहुत ही विशाल, और सबके लिए हर समय कुछ ना कुछ करती रहती है। आज कहा कि नई चीज खिलाएंगे, तो मैंने कहा नई चीज क्या खिलाएंगे, तो मेरे को कल बोला कि नहीं हम नया चीज सोचा है, पाइन एप्पल का हलवा। मैंने कहा ये तो कभी खाया ही नहीं इन्होंने, नई चीज मिल रही है, कभी कभी कहीं पर मिला होगा लेकिन ऐसी चीज तो नहीं मिलती है ना। और बोला गरम गरम, मैंने कहा रात को भेज देना, कहती नहीं मैं तो सुबह भेजूंगी, गरम गरम खाएं, ठंडा होने में तो फिर टेस्ट में अंतर होता है ना, अभी गरम गरम टेस्ट करो, बाकी दिन में कभी भी खाते रहना है। तभी क्लास की टोली आप सबको मिलेगी पाइन एप्पल का गरम हलवा और किन्नू। ऐसी महान आत्माएं जिनके दिल में बाबा, दादियां, मधुबन और मधुबन के सभी स्थानों के प्रति उनका बहुत ही प्यार रहा है, वो प्यार ऐसा था हर एक के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। विश्व की आत्माओं की भी म्यूजियम से बहुत सेवा हुई, इस म्यूजियम से भारत के अंदर भी कई सेंटर खुले हैं, इस म्यूजियम से विदेश में भी कई भाई बहने निकले हैं, गुजराती लोग भी निकले हैं। तो पहले से माउंट आबू में पहला सेवा का, जो बाहर की सेवा का स्थान था वो था आध्यात्मिक संग्रहालय, फिर उसके बाद धीरे धीरे बना, फिर मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान स्वरूप बना, अब तो अनेक स्थान है, लेकिन यहाँ की सेवा की तो बहुत ही कमाल रही है। बाबा ने ऐसी आत्मा को चुन करके निमित्त बना करके रखा, जो कि एक ही लगन, एक ही बाबा के साथ उसने अटूट निश्चय से सेवाएं करती रही और सफलता को प्राप्त करती रही। अभी तो बाबा दूसरा कार्य उनसे करा ही रहे होंगे, तो अभी हम सभी विशेष उस आत्मा के निमित्त योग में बैठ के श्रद्धांजलि और मन की भावनाएं प्रकट करेंगे। ओम शांति।